ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों क्रोएशिया, कनाडा और साइप्रस की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम चरण में क्रोएशिया में श्री मोदी ने क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रे प्लेंकोविच के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। इसमें वैश्विक शांति, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा व्यापार, प्रौद्योगिकी और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया गया। प्रधानमंत्री ने संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करते हुए कहा कि यूरोप हो या एशिया, युद्ध से समाधान नहीं मिल सकता है। उन्होंने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने के लिए एकमात्र व्यावहारिक मार्ग हैं। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद की निंदा की।
हम सहमत हैं कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली शक्तियों का विरोधी है। 22 अप्रैल को भारत में हुए आतंक के हमले पर संवेदनाओं के लिए हम प्रधानमंत्री जी और क्रोएशिया सरकार के हार्दिक आभारी हैं। ऐसे कठिन समय में हमारे मित्र देशों का साथ हमारे लिए बहुत मूल्यवान था।
श्री मोदी ने बताया कि क्रोएशिया के साथ कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने का फैसला किया गया।
हमने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और विश्वसनीय सप्लाई चेन तैयार करने के लिए कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। हम फार्मा, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसे कई महत्वपूर्ण विषयों में सहयोग को बढ़ावा देंगे।
प्रधानमंत्री ने जहाज निर्माण, साइबर सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर बल दिया। श्री मोदी ने कहा कि संयुक्त प्रशिक्षण, सैन्य अभ्यास और उद्योग स्तरीय साझेदारी के लिए दीर्घावधि रक्षा सहयोग योजना बनाई जाएगी। दोनों देशों ने 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसमें कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान, शिक्षा और युवा मंत्रालय के बीच सहयोग और जागरेब विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ की स्थापना के समझौते शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने क्रोएशिया में योग की बढ़ती लोकप्रियता की भी सराहना की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जाएगा। ईरान से निकाले गए 110 भारतीय विद्यार्थियों को लेकर एक विमान आज तड़के नई दिल्ली पहुंचा। ईरान और इसराइल के बीच चल रहे संघर्ष के बाद भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने उन्हें सुरक्षित आर्मेनिया पहुंचने में मदद की। ईरान और आर्मेनिया में भारतीय राजनयिक मिशनों की देखरेख में ये सभी विद्यार्थी सड़क मार्ग से आर्मेनिया की राजधानी येरेवन पहुंचे। ये विद्यार्थी कल दोपहर विशेष विमान से येरेवन से रवाना हुए थे। ईरान से लौटे जम्मू कश्मीर के तहमीद इस्लाम ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में सरकार का आभार व्यक्त किया।
मेरा नाम तहमीद इस्लाम है, मैं जम्मू एंड कश्मीर से, और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत शुक्रगुजार हैं, पर्टिकुलरली फॉरेन मिनिस्टर अफेयर्स के, उन्हें बहुत आगे खदमत हमारी की और हमें यहाँ तक फास्ट ट्रैक बेसिस पे लाया है।
इस बीच इसराइल और ईरान का संघर्ष तेज हो गया है। ईरान ने दावा किया है कि इसराइल की सेना के हमलों और बमबारी से हताहतों की संख्या बढ़ गई है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के किसी भी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से पूरे पश्चिम एशिया में पूर्ण युद्ध भड़क उठेगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्षेत्र में सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। उन्होंने ईरान के बिना शर्त समर्पण की भी मांग की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोनों देशों के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की है। श्री पुतिन ने ईरान, इसराइल और अमेरिका के साथ रूस के प्रस्तावों को साझा किया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के 11 साल पूरे होने पर देश में खेलों में बड़े स्तर पर बदलाव आया है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, खेलो इंडिया और खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति जैसी पहलों ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन में काफी सुधार किया है। पैरा एथलीट और एशियाई पैरालंपिक समिति की कार्यकारी बोर्ड की सदस्य दीपा मलिक ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में सरकार के बहुआयामी कदमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार ने खेल क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन किया है, जिससे खिलाड़ियों के जीवन में सुधार आया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।